Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444. 2371-7106 or 2342-1050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain hum Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और देश के शेयर बाजारों के बारे में। दिन शनिवार का है और आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं, आप अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हो फोन करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं, नम्बर्स हैं 23-31-44, 23-42-1050 और 23-717-106। किसी भी नंबर पर फोन करें, हमसे सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
वार्म वेलकम शरद।
धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन।
शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में हेडलाइंस।
जीएसटी काउंसिल रिड्यूसेज जीएसटी ऑन मोलासेस टू 5%, prepackaged flour containing 70% millets to be free from GST. On Wall Street, the Dow climbs 0.9%, lifted by tech shares. And Brent crude oil futures tank 11% during the week to close the week at $84.58 a barrel.
जीएसटी परिषद की आज नई दिल्ली में हुई 52वीं बैठक में मोलेसेस पर जीएसटी की दर घटाकर 5% की गई। 70% से अधिक मिलेट वाले आटे को जीएसटी मुक्त किया गया। अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स टेक शेयरों की तेजी की वजह से 0.9% बढ़ा और इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड की कीमत 11% गिरी, प्रति बैरल $84.58 पर पहुंची। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल के अलावा बाजरा तथा शीरे पर जीएसटी की दरों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि परिषद ने शीरे यानी मोलेसेस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 70% बाजरा युक्त आटा खुले में बेचे जाने पर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसे पैक करके लेबल लगाकर बेचा जाता है तो इस पर मात्र 5% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल के संबंध में किए गए बदलावों के बारे में उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा अब 70 साल कर दी गई है, जबकि सदस्यों के लिए यह आयु सीमा 67 वर्ष कर दी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाली शराब बनाने के इस्तेमाल किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है। इसके लिए जीएसटी की कानून समिति आवश्यक कानूनी संशोधनों पर विचार करेगी। जीएसटी परिषद ने सरकारी निकायों को की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उन्नयन की सेवाओं को छूट देने की भी सिफारिश की है। परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर लगाया जाएगा ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकें, जिससे भारतीय रेलवे के खर्चे कम होंगे। महत्वपूर्ण खबर है ये, आज 52वीं बैठक पर समय बीच में हम चर्चा करेंगे शरद कोहली जी के साथ अपने प्रोग्राम में। फिलहाल चूंकि कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले चलेंगे विकास के पास। कोलकाता से हमें फोन किया है विकास ने। विकास, क्या सवाल है आपका?
जी सर, नमस्ते सर।
नमस्ते।
नमस्ते।
ऑटो कंपोनेंट एंड टायर, ये सेक्टर कैसा रहेगा इन्वेस्ट के लिए? और डेट अगर 1.1 समथिंग इससे ज्यादा होगा तो कंपनी के बारे में क्या सलाह है? और वॉल्यूम वर्सेस शेयर प्राइस क्या रिलेशन है?
ऑटो कंपोनेंट की बात करें और टायर्स की बात करें विकास, मुझे लगता है कि ऑटो कंपोनेंट्स में सिर्फ आपको यही देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भविष्य नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ नजर आ रहा है, जो फॉसिल फ्यूल्स हम आगे जा रहे हैं, तो जो ऑटो कंपोनेंट्स पेट्रोल और डीजल में इस्तेमाल होते हैं वो हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आपको मतलब उनकी कंपनी या उनका सेक्टर रिटर्न ना दे पाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप ऑटो कंपोनेंट्स ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिन कंपनीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स ज्यादा बनाए जाते हैं। हालांकि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक यही खूबी है कि उसमें जितने कंपोनेंट्स एक नॉर्मल व्हीकल में होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत कम कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप ध्यान दें इस पर। और टायर्स तो मुझे लगता है हमेशा ही चलने वाला है, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, तो टायर्स का मुझे फ्यूचर अच्छा लगता है। और इंडिया में जिस तरीके से गाड़ियों की और ऑटोमोबाइल्स की बिक्री बढ़ रही है, मुझे लंबी अवधि में विकास इसका बहुत अच्छा नजर आता है। विकास ने एक और भी कोई सवाल पूछा था, वो पूरी तरह से बहुत क्लियर नहीं था विकास, तो आप मौका लगेगा तो दोबारा या फिर आप अगली बार पूछेगा।
जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज योगेश। वार्म वेलकम योगेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू सर। नमस्कार सर।
नमस्कार।
मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा जो है वो REITs को लेकर के, क्या ये जो रीच करके REITs करके आए हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो हैं, ये म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहे हैं और क्या ये रियल एस्टेट का निवेश का अच्छा तरीका हो सकता है आने वाले टाइम में?
जी हाँ बिल्कुल।
सर एक सवाल जो हमारा है वो है ये जो इसराइल में भी वार स्टार्ट हो गई है, इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं लोग अभी?
योगेश आपका पहला सवाल है रीच के बारे में, जी हाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपने जो दूसरा सवाल पूछा बहुत काम का है कि क्या ये निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल अच्छा विकल्प है क्योंकि रियल एस्टेट जब किसी को खरीदना होता है तो आप जानते हैं रियल एस्टेट 5,000 7,000 10,000 में तो होता नहीं है। रियल एस्टेट अगर आप शहरों में बात कर रहे हैं तो करोड़ों में होती हैं, और नीचे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाएं तो वहां लाखों में बात होती हैं। तो मुझे लग रहा है छोटी राशि से जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कुछ कुछ जगह बहुत वाकई में ऐसी हैं जहां रियल एस्टेट में बहुत तेजी आई हुई है, तो बिल्कुल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपने ठीक कहा करीब करीब म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। वो एक ट्रस्ट बना दी जाती है, उसमें सब लोग उसके मेंबर्स बन जाते हैं, जो लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में आप उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, और उस कॉर्पस को फिर रियल एस्टेट में लगाया जाता है और उसमें जो रिटर्न आता है वो सब में बांट दिया जाता है जिस प्रकार से ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट होता है उसके अनुसार। बहुत अच्छा विकल्प निकल के आया। दूसरा आपने इसराइल का पूछा, दुर्भाग्यपूर्ण है कहीं भी विश्व में योगेश अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है और सामान्य स्थिति अस्त व्यस्त होती है तो शेयर मार्केट तो बहुत सेंसिटिव है, तो अगर इसका कोई दूरगामी प्रभाव होता है या इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ता है तो लाजमी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे अछूती नहीं रह सकती। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये संकट जो आया है वो जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर ये फैलता है या ज्यादा दिन तक चलता है, हमने देखा जब रशिया यूक्रेन के बीच में संघर्ष हुआ था और आज भी चल रहा है, तो आपने देखा किस प्रकार महंगाई बढ़ी, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज पूरा विश्व, हम तो यहां पर नारा देते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, तो परिवार के किसी भी हिस्से में कहीं भी कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो वो पूरे परिवार को जरूर ही इफेक्ट करती है, कहीं कम करती है कहीं ज्यादा करती है, कितने समय तक चल रहा है इस पर यह निर्भर करता है।
वी वुड लाइक टू टेक योर व्यू ऑन इंडिया इजराइल इकोनॉमिक रिलेशंस आफ्टर वी हैव गॉन टू दिल्ली एंड स्पोकन टू जेएस सलूजा। अ वार्म वेलकम मिस्टर सलूजा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Good evening to Captain Kohli and the entire market team.
Good evening, sir. I'm not a captain. I'm just...
I'm saying Captain Kohli because you are Virat Kohli of, you know...
Achha, okay. Okay, all right. Thank you. Yes, please.
And my question is that I just want to know your view, detailed view, on PSU sector bank and second is the infrastructure. Why I'm asking this? Because government has done a lot of efforts in PSU banks, like in the Indonesia and other things. So I just want to elaborate.
Yes. Mr. Saluja, the very thought which made you ask this question is the very reason, you know, is the answer to my question also, if I put it in a different way. Because as you are very rightly thinking, PSU banks have gone through a lot of cleansing. If we see the NPAs, over 10 lakh of NPAs were sort of not written off. I mean, a lot of people take wrong meaning of written off, that they've been forgotten, but they were written off to cleanse the balance sheet. So I think PSU banks are looking much more healthier. That phone banking concept is not there. Loans are being given on the basis of merits. So I think the futuristic NPAs may not be as bad as they were in the last few decades, shall I say. Infrastructure also, you know, India is going through, you know, the Amrit Kal, which is 2047. Our Prime Minister has dreamt of a developed India. And, you know, one of the key characteristics of a developed economy is a very solid, a very robust infrastructure. So I think the kind of money which government is spending on infrastructure, 100 lakh crore plus of national infrastructure pipeline, I think infrastructure in our country, Mr. Saluja, has got a very, very bright future. So any sector, any country, any company, I'm sorry, which is engaged in either infrastructure or related activities, I think, but make sure, Mr. Saluja, that when you choose a company, make sure that the other credentials of the company, the fundamentals of the company should be good. When I say credentials, I mean the book value, the PE ratio. Make sure that the order book is full and make sure that the company's, whatever it has delivered till now, has been very credible. So then if you choose, yes, both the sectors, I put my bets, Mr. Saluja, but with a long-term view.
Hasmukh ji, hamare saath Mumbai se jude hue hain. Hasmukh ji, kya sawal hai aapka?
Yeah, first of all, good evening, Akhil Bantra.
Good evening.
Yeah. Is this RBI policy which got completed just 2 days back? So first of all, my question is, what is the, you know, your view for the inflation for globally and India, number one. Number two, the terminology used by our RBI governor, VRRR, and bonds especially, etc. So what is your view, etc.? Why RBI wants to suck the more liquidity? Is he still bothered about inflation? Thanks.
Well, if you see, Mr. Hasmukh, if you've heard the commentary of, you know, this time when the RBI policy came, we were more looking forward to the commentary because we all knew that there's going to be no change in the repo rate because of the situation. But the commentary is what matters more, as what is the outlook. And he was clearly sounding, the undertone was hawkish, you know, as we call it in our own language. So inflation, the Honorable Governor very categorically said that inflation is still a concern. 5.4% has been the estimate for the FY24. And although it will taper down, but then, you know, other things have to remain constant. The geopolitical situation, the supply chain should not be disrupted. So if everything goes well, we should be able to control inflation. And he's very categorical in saying that 4% is the target we want to achieve. Between 2 and 6, the average is 4. So he's targeting 4%. As regards liquidity, Mr. Hasmukh, yes, liquidity on and off RBI controls. We saw that there was a time when the 2,000 rupee note was invited to be deposited. Liquidity suddenly shot up. Then RBI had to, you know, do certain changes in the monetary policy to make sure that liquidity is sucked away. Now that liquidity has been sucked away, I think, so RBI keeps tab on how much liquidity is there in the system at this point of time. And accordingly, you know, this in broader terms, since you referred about technicals, I didn't want to use technical, but since you said there's a broader term, is called OMO. OMO is open market operations. So these are the government securities which governments frequently sells and buys as per the requirements, as per the market. And of course, RBI conducts open market operations with regard to either reducing or increasing the liquidity as per the requirement. Yes.
Gopal joins us from Mumbai. Gopal, a warm welcome. Please.
Namaskar ji, maafkan dengo. Sir, mera TDS claim ke baare mein question hai. Ji. Mera father aur mother ke expire ho gaye the. Wo NCDL mein case kar raha tha. To case mein hum log jeet gaye. Hum log ka favor mein aaya tha. To company ne interest ke saath mein refund kiya tha.
Ji.
To usne company ne TDS kaata. To maine TDS claim bheja usne. To mere bhai ke wife ka to TDS refund aa gaya. Lekin mere father aur mother expire ho gaye. To nominee ke naam pe refund tha. लेकिन वो क्लेम अभी तक रिफंड नहीं आया, तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ बता सकते हैं?
जी हाँ गोपाल जी, मैं बता सकता हूँ आपको. अगर आपका रिफंड नहीं आया है और टीडीएस की वजह से, तो उसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, बल्कि तीन तरीके मैं आपको बताता हूँ. पहले तो आप एक काम करिएगा कि आप पोर्टल पे जाइए, जो नॉमिनी है वो आपके मदर फादर के, स्वर्गीय मदर फादर के पोर्टल पे लॉग इन करके, और उस पर देखिए कि बैंक अकाउंट डिटेल्स कहीं चेंज तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो भी एक कारण बन जाता है. फिर भी नहीं आता है तो आप एक पोर्टल पे ऑप्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट, आप उसमें जाइए, अगर वो इनेबल हो रहा है तो आप उसमें एक रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो एक ई निवारण की सुविधा दी गई है आयकर पोर्टल पर, जिसमें आप अपनी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपनी ग्रीवांस को डाल सकते हैं और उसके माध्यम से। तो इन तीनों मेथड्स में से एक ना एक में से गोपाल जी जरूर आप कामयाब होंगे, और जब होंगे तो हमें बताइएगा जरूर, हमें सुन के खुशी होती है जब हमारी बताई हुई किसी चीज से किसी का काम बन जाए, खासकर अगर पैसे आ जाएं तो कभी कभी तो हम हर्ष और राजेश लड्डू भी मांग लेते हैं जी।
अनिल फ्रॉम गुरुग्राम जॉइन्स अस नाउ, अ वार्म वेलकम अनिल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग
टीम,
गुड इवनिंग।
मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सिचुएशन इन यूएस एंड यूरोप। तो बहुत टाइम से बात चल रही थी रिसेशन, अब बीच में लगता है कि ठीक हो गया है, फिर लगता है रिसेशन है। तो करंट आपका क्या असेसमेंट है रिलेटेड टू रिसेशन इन आइदर यूएस और यूरोप, बिकॉज इट इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट आवर मार्केट्स एज वेल।
एब्सोल्युटली अनिल, अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिकॉज वाकई में कभी लगता है जैसे रिसेशन है, कभी लगता है नहीं है। तो अगर कभी लगता है रिसेशन है, कभी लगता है नहीं है, तो कुछ तो कुछ ना कुछ तो बात है इस कश्मकश के बीच में, कुछ तो है। वो कुछ ये है अनिल कि यूएस जो है वहां पर हार्डली यू नो द ग्रोथ इज ओनली 2-3%, एंड यूरोप इज अ वेरी हाइब्रिड काइंड ऑफ एरिया, यू नो, वेयर जर्मनी नेदरलैंड्स आर इन रिसेशन, फ्रांस इज ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन, यूके इज बेयरली अबव रिसेशन। तो बहुत अच्छी परिस्थिति तो नहीं है अनिल, इफ आई वुड मेक अ ब्रॉड कॉमेंट ऑन योर क्वेश्चन, दैट इट इज नॉट गोइंग गागा एज फार एज दैट रीजन, द वेस्टर्न रीजन इज कंसर्न। इनफैक्ट वॉट यू सेड इन द लेटर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज दैट इट विल इफेक्ट इंडिया, येस इट विल इफेक्ट, इनफैक्ट यू विल बी, आई एम होप यू आर अवेयर दैट इट इज ऑलरेडी इफेक्टिंग इंडिया, आर एक्सपोर्ट्स आर अंडर प्रेशर एट दिस पॉइंट, द काइंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक्स विच वर देयर अर्लियर विच इज नॉट देयर बिकॉज लॉट ऑफ आर एक्सपोर्ट्स गोज टू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। सो एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल आपने ठीक पहचाना अनिल, वहां पर बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है जैसे आपने बोला, किसी महीने लगता है रिसेशन है, किसी महीने लगता है नहीं है, किसी महीने थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, किसी महीने फिर नीचे सरक जाता है। बस अगर मैं इसको बहुत संक्षेप में बोलूं तो बस मार्जिन पे परिस्थिति चल रही है, इस मार्जिन को भी मैं आप कहिए तो रिसेशन ही मानता हूं जी।
पवन जी हमारे साथ हैं हमीरपुर से, पवन स्वागत आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछ लें प्लीज।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मैं काफी समय से इसको जो है वो सुन रहा हूँ। मेरे जो है वो दो क्वेश्चन हैं
जी।
एक तो जो हिमाचल गवर्नमेंट है सर, इसने जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की है, तो इस ओल्ड पेंशन स्कीम से जो न्यू पेंशन स्कीम थी उससे जब शिफ्ट हुए हम ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो न्यू पेंशन स्कीम में जो कर्मचारियों का पैसा लगा हुआ है, क्या वो पैसा जो है वो उन कर्मचारियों को जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो केंद्र सरकार है उसने जो है वो पिछले 9 सालों में जो है वो जो कर्ज लिया है उसमें प्रति व्यक्ति पर जो है वो कितना कर्ज हो जो है वो चढ़ा है पिछले 9 सालों में?
चलिए पवन, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। देखिए क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है और न्यू। देखिए ये तो सरकार के जिस प्रकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के जिस प्रकार फिस्कल पोजीशन होगी, उनके पास जिस प्रकार के रिसोर्सेज होंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि वो वापस करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है ये एक स्टेट का पॉलिटिकल मुद्दा है और एक स्टेट के द्वारा किए गए जो वादे होते हैं उनके मैनिफेस्टो में और उनका जो भी अपना एजेंडा है, तो इसका तो वही बता पाएंगे कि उनके पास इस टाइम इतने रिसोर्सेज हैं। और मुझे लगता है इसके लिए एक पॉलिटिकल मैंडेट चाहिए होता है, आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए एक पॉलिटिकल मैंडेट चाहिए और ये वहां की राज्य सरकार ही बता सकती है। दूसरा आपका सवाल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं इसको बोलता हूं देश ने जो लोन लिया हुआ है, देश के विकास के लिए लोन लिया, इस समय हमारे पर 155 लाख 160 लाख करोड़ के बीच की टोटल उधारी है। ठीक है पहले से ज्यादा है, पर हम ये देखें कि ये सारा पैसा हमारा इस्तेमाल हुआ है देश के विकास के कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो पवन जी आपके सवाल पे मैं बहुत अगर पिन पॉइंटेडली आऊं कि प्रति व्यक्ति कितना है, तो अगर आप 155 लाख करोड़ को आप कैलकुलेटर उठा के 140 करोड़ जनता से डिवाइड करिए, पर क्या आपके ऊपर है पवन जी, मैं सवाल पूछूंगा, मतलब आपको कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नोटिस आया कि भाई ये प्रति व्यक्ति कर्ज है, पवन जी आप इसको वापस करिए, अगर हर्ष मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा तो कभी हमारे पास किसी भी सिटीजन के पास ऐसा नोटिस राजेश मुझे तो नहीं लगता हमें आया है कि आप अपनी ईएमआई नहीं दे रहे हैं प्रति व्यक्ति जो आपके ऊपर देश ने जो ली। तो ये एकमात्र पवन जी आंकड़ा, ये तो हंसी मजाक की बात है
जी जी,
ये एकमात्र आंकड़ा है पवन, और इसको हमें आंकड़े की तरह ही देखना चाहिए। एक आम सिटीजन के नाते हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में कहां जा रही है, और उसका जवाब यह है कि हम दुनिया से बहुत अच्छे हैं इस समय, हम दुनिया की तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से हैं, पांचवी हैं, तीसरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात ज्यादा सांत्वना देने वाली है, ये एक आंकड़ों को हम कैलकुलेट करके निकालें कि प्रति व्यक्ति कितना है, तो आपको तो चिंता करने की बिल्कुल बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पर मुझे तो कभी नहीं नोटिस आया कि भाई देश का इतना कर्ज है तो आपके ऊपर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जो भी निकल के आता है, कैलकुलेटर उठाइएगा, मैंने आपको नंबर्स बता दिए, 142 करोड़ को, या यूं कहूं 155 लाख करोड़ को 142 करोड़ से मल्टीप्लाई करेगा, मुझे लगता है कैलकुलेटर में जीरो नहीं होंगे, तो आप जैसे भी करके आप निकाल लीजिएगा अगर आपको आंकड़ों का शौक है। बाकी कोई निश्चिंत रहे पवन जी, कोई भी चिंता की बात नहीं है।
व्हाइल यू डू द कैलकुलेशंस लेट अस टेल यू दैट ऑन द वॉल स्ट्रीट येस्टरडे की इंडिसेस एंडेड शार्पली हायर लेड बाय टेक्नोलॉजी शेयर्स एज इन्वेस्टर्स असेस्ड अ जॉब्स रिपोर्ट दैट शोड यूएस हायरिंग रोज ब्रॉडली इन सेप्टेम्बर विद स्लोइंग वेज ग्रोथ। Information technology was up the most of any S&P 500 sector, followed by communication services. So the Dow Jones Industrial Average climbed 288 points, or 0.9%, to end at 33,408. The S&P 500 jumped 50 points, or 1.2%, to close at 4,309. And the Nasdaq Composite advanced 212 points, or 1.6%, to 13,431. In economic data in the U.S., non-farm payrolls increased by 3,36,000 jobs last month, the Labor Department said. Monthly wage growth remained moderate, with average hourly earnings rising 0.2% after a similar gain in August. And in the 12 months through September, wages increased 4.2%. Joining us from Thane is Gurunath now. A warm welcome, Gurunath. Please go ahead and ask your question.
Sir, namaskar.
Ji.
Kohli sir ko bhi namaskar.
Namaskar, Gurunath ji.
Sir, mera question hai, ye jo hamara jo matlab hum petrol diesel jo import karte hain, sir, ye jo aankda bataya gaya hai ki 16 lakh crore ke aaspaas जो हम इम्पोर्ट करते थे
जी,
तो सर ये मतलब अभी ये जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का और जो इथेनॉल मिक्स करने का, तो सर इससे मतलब गवर्नमेंट कितनी ध्यान दे रही है, और ये जो मतलब ये जो तेल का उत्पादन करने वाले जो मतलब हमेशा पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, कभी ये प्रोडक्शन घटाते कभी बढ़ाते और इसमें रेट में कभी कटौती करते तो कभी बढ़ा देते, तो सर हम एनर्जी में मतलब आत्मनिर्भर आगे हो सकते हैं? थैंक यू सर।
क्यों नहीं हो सकते गुरुनाथ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो ओपेक ओपेक प्लस देश हैं, ये वाकई में जब कीमतें गिर जाती हैं तो प्रोडक्शन कट कर देते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो फिर उनको ज्यादा मुनाफा होने लगता है। बिल्कुल, हम आपने कहा एथेनॉल, हम एथेनॉल बिल्कुल मिला रहे हैं इस समय, जो आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एथेनॉल ज्यादातर, पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, कभी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो उसको सूंघ के देखिएगा, मैंने एक बार कोशिश करी थी, उसमें बड़ी एक डिफरेंट सी स्मेल आती है जिससे आपको अंदाजा होता है, बाकी तो आपकी गाड़ी को ज्यादा महसूस होता है, मुझे लग रहा है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, और हमारे जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका तो ये भी है कि किसी एक जमाना ऐसा है हम 50% तक एथेनॉल मिलाते हैं, और प्रधानमंत्री जी के मुझे लग रहा है निजी दिल के करीब है बहुत ये जो पूरा मुद्दा है एथेनॉल का, वो तो समय समय पर इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो बिल्कुल हम होंगे कामयाब गुरुनाथ जी, एक पुराना गाना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, बहुत जल्दी वो दिन आएगा, हम एनर्जी में सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे, और ईवी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशंस बढ़ रहे हैं, बैटरी की लाइफ बढ़ रही है, कीमतें कम हो रही हैं, आप देखिए हर आने वाले 3 महीने में इन चीजों में सुधार होता जा रहा है, और एक दिन जिस दिन पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और ईवी की कीमत बराबर हो जाएगी और आप भी नहीं लेंगे उसको, एथेनॉल मिले चाहे ना मिले, तो हम बिल्कुल उस ओर अग्रसर हैं गुरुनाथ जी, बिल्कुल चैन से आप सो सकते हैं।
सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, लेट्स टेल यू दैट द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस पोस्टेड देयर स्टीपेस्ट वीकली लॉसेस सिंस मार्च आफ्टर अनदर पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ रशियाज फ्यूल एक्सपोर्ट बैन, कंपाउंडेड डिमांड fears due to macroeconomic headwinds. So the Brent crude oil futures ended the week at $84.58 per barrel, tanking 11% during the week. The U.S. crude futures closed the week at $82.79 a barrel, slumping 8% in the past week.
और कोलकाता से हमारे पास जुड़े हुए हैं अतनु जी. अतनु, बहुत बहुत स्वागत आपका. सवाल पूछ ले प्लीज जल्दी से.
गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. दैट अपकमिंग वर्ल्ड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स वीक इज कमिंग फ्रॉम 9 to 15. माय क्वेश्चन इज सर, एज ए इन्वेस्टर व्हिच सेक्टर्स वुड बी फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस सर. थैंक यू सर.
All right, Mr. Atanu, you referred about the World Investor Summit, although the World Investor Summit has got a very broader perspective. But then, as far as investing in sectors is concerned, I can name a few sectors for you. I think the top of my list is always defense, because India is doing remarkably well on defense. We've crossed 16,000-17,000 crores of defense exports. FMCG is another sector, because India is such a large consumption-based economy. I can reveal a number. 55% of our economy comprises of consumption. So we are a very large consumers market. So I think FMCG is also a very interesting sector. Other than that, somebody asked before you, infrastructure. You know, anything connected with infrastructure, electric vehicles, fertilizers, chemicals. I think these are the sectors. IT, I still put my bets on IT, because the way technology is taking over us, whether it's artificial intelligence or Internet of Things, and there's so many things happening in the world of technology. So these are some of the sectors, Mr. Atanu, which you can keep in mind, but do make sure that you choose the companies properly and you do it for long term. Don't start trading. I find a lot of people who start trading, they come as investors, they become traders, and then they end up burning their fingers. So keep a long term view and keep an eye on the sectors I just named.
Quickly, your take on the 52nd GST Council meeting. Three important factors. One, GST Council recommended nil rate for food preparation of millet flour. Two, recommends to keep the extra neutral alcohol, ENA, outside GST. And three, recommends reducing GST on molasses from 10% to 8% to 5%.
I think with the International Year of Millets, Rajesh, this was quite expected, because the way government is promoting millets around the world, you look at the health benefits, and I wish in market mantra, I feel like talking on millets sometime, but this is market mantra, we can't talk on health benefits of millets, but I take it thrice a week. And, there's foxtail, there's barnyard, there's little, there's so many millets, you know, bajra, ragi, of course, are the older ones. Then, of course, molasses, yes, the government has been focusing. Molasses is being used for so many things. I mean, we've seen molasses being used for several applications. So that was also on the radar of the government. So all in all, I think the GST, this was the 52nd meeting, Rajesh, and I think in each meeting, I'm glad that GST Council sets its agenda beforehand so that you don't miss out, and it's very, very targeted as far as the meeting is concerned. And we see that coming at the end of the
bilkul,
day.
Bilkul. Yeah. Aur bas ek minute ka samay bacha hai. Quickly, is saptah to market pehle gira, lekin antim do dinon mein theek thaak recover kiya hai. Agle saptah ka outlook.
Mujhe lag raha hai bond yields par nazar rahegi, Harsh, aur bond yields jo ki 16 saal ke apne highest par hai, wahi main is time villain bani hui hai bond yields. और क्रूड की प्राइसेस तो थैंकफुली ठंडी हो गई. और ये जो हमारे विदेशी बॉयज हैं, ये जो विदेशी मेहमान हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं. अगस्त से लेके अब तक मैं देख रहा था आंकड़ा 52,000-54,000 करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं. तो इनको हम कहेंगे भैया बहुत बेच लिया, अब थोड़ा सा ठहर भी जाइए, इतना बेच के बहुत पैसा आपने कमा लिया. तो जब मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेक लगाएंगे तो आपको मार्केट यहां से रिकवर, इनफैक्ट पिछले दो दिनों में जब मार्केट रिकवर हुई तो उस समय इनकी बिकवाली पर कुछ रोक लगी थी. तो इनको आइए कुछ कहते हैं कि भाई आज हमारी आवाज सुन के भैया बेचना वाचना बंद करिए, मार्केट को चढ़ने
करेज करेगा.
मुझे लग रहा है वो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो थोड़ी ठंडी हो जाए तो ये बेचना बंद करेंगे, उम्मीद ऐसी रखते हैं.
और आज के लिए इतना ही, वक्त खत्म हो रहा है. तमाम श्रोता जो हमसे जुड़े, हमसे सवाल पूछा, आपका शुक्रिया. और शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.
धन्यवाद.
थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, जीएसटी काउंसिल रिड्यूसेस जीएसटी ऑन मोलासेस टू 5%. प्रीपैकेज्ड फ्लावर कंटेनिंग 70% मिलेट्स टू बी फ्री फ्रॉम जीएसटी. On Wall Street, the Dow climbed 0.9%, lifted by tech shares. And Brent crude oil futures tank 11% during the week to close the week at $84.58 a barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.